देखते हैं यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वतरकना बादहुम यौम इज़ यमूजु फी बाद, और हम छोड़ देंगे उनमें से बाज को उस दिन, मिलजुल के लहरें की तरह होंगे बाज में। अब यहां पे मैं आपको ये बताऊंगी इस बारे में। एक तो ये बात कि ये अगर हम पीछे से इसको जोड़ें तो फिर तो ये याजूज माजूज हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम छोड़ देंगे उनको। यौमा जिन का मतलब वो दिन जब कुर्बे कयामत होगी, तो फिर हम इनको छोड़ देंगे। किन को? याजूज माजूज को। तो वो लहरों की तरह आएंगे, जैसे वेव्स की वेव्स, वेव्स की वेव्स, इतनी तादाद में होंगे, इतने ज्यादा होंगे, इंसान जो दुनिया में इंसान रह रहे हैं ना, उनसे समझ ले 10 गुना ज्यादा। एक जगह पे आता है 10 गुना ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा होंगे। तो वो तो जब निकलेंगे तो भागेंगे, ऐसे लगेगा हर पहाड़ों से, इससे ऐसे जैसे लहरें नहीं आ रही थी पानी की, इस तरह। आप देखें जब बाज दफा मक्खियों के गोल होते हैं या बाज दफा परिंदों के गोल होते हैं, तो ऐसे आते हैं जैसे कि कोई लहरें होती हैं। तो ये जो 98 आयत तक है, यहां पे ज़ुल्करनैन का किस्सा खत्म हो गया। अब सुभान अल्लाह, जो ट्रांजिशन है इसके बाद कितनी स्मूथ है कि एक पास्ट की बात हो रही थी, हजारों साल हो गए हैं, कहीं ज़ुल्करनैन कितने हजारों साल पहले आया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने, और फिर अब जब कुर्बे कयामत का वक्त आएगा तो तब ये दीवार गिरेगी और हम उनको छोड़ देंगे कि वो लहरों की लहरें आएंगी। तो पास्ट बहुत हजारों साल पहले से अब फ्यूचर के अंदर लाया गया, जो कुर्बे कयामत का वक्त है। ठीक है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते, फिर मैं आपको दूसरा माना बताऊंगी यौमा इज़ का। तो अब याजूज माजूज कौन है और ये क्यों ऐसे आएंगे और क्या इनके पीछे कहानी है? तो बात ये कि याजूज माजूज एक याजूज कौम है और एक माजूज कौम है, इनके कौमों के नाम है। कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के जो तीन बेटे थे ना, हाम, साम, याफिस, याफिस की औलाद से ये हैं। और ये लोग इंतहाई फसादी लोग हैं, इंतहाई फसादी। इनके बारे में हदीस में भी आता है कि ये बहुत बड़ा फितना इनका होगा। और ये कैसे होंगे, इनकी जो यानी फेस कैसे होंगे, हदीस में आता है चौड़े चेहरों वाले, छोटी छोटी आंखों वाले और सुर्खी मायल स्याह बालों वाले, यानी रेडिश ब्लैक। हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, इनके चेहरे चमड़ा भरी ढाल की तरह होंगे, जैसे मोटे मोटे होंगे, जैसे कि कोई शील्ड होती है ना, उसको मार मार के फ्लैट कर दिया जाता है ना, बिल्कुल वो। अब आप ये ना मेरे से पूछिएगा कि ये कौन है या क्या है, कहाँ पे हैं, ये वो नहीं मुझे पता। ठीक है, और हदीस में आता है कि, अच्छा हदीस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुरान पाक में इनका जिक्र दो जगह आता है, एक जगह ये आपने पढ़ लिया, दूसरी जगह सूरह अंबिया में आयत 96-97 में। वहां पे क्या आता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। यहाँ पे आया ना मौज की बात, जब वो ऐसे आएंगे तो ऐसे लगेगा वेव्स हैं। उस वक्त सच्चा वादा पूरा होने का वक्त आ पहुंचेगा, उस वक्त उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया, और वो क्या कहेंगे, या वैलना कद कुन्ना फी गफलत मिन हाजा, ए हमारी बर्बादी, हम इससे गफलत में पड़े रहे, अल्लाह ताला माफ करे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम तो जालिम थे। वो तब ये कहेंगे, यानी ये बिल्कुल कयामत की जो बड़ी निशानियां है ना, अशरातुल कुबरा, एक तो छोटी निशानियां, जो छोटी निशानियां वो ऑलमोस्ट सारी पूरी हो चुकी हैं। आप पढ़ के देख लें, कयामत की निशानियों के ऊपर किताब भी है, छोटी छोटी तमाम निशानियां पूरी हो चुकी, लेकिन जो बड़ी निशानियां हैं वो अभी पूरी होनी है, और वो 10 निशानियां। और वो 10 निशानियां क्या हैं, हदीस में आती हैं ये निशानियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इनको याद करेंगे, ठीक है, निशानियों को। दज्जाल का जाहिर होना, نمبر ٹو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر تھری یاجوج ماجوج کا آنا، اور تین آپ کو میں وہ نشانیاں بتاتی ہوں جو آپ کو یاد کرنا اس طرح سے آسان ہوں گی کہ وہ زلزلے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تین نشانیاں اس میں پوری ہو گئی، فور فائیو اور سکس. زلزلے کہاں آئیں گے؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی تین پوری ہو گئی. اور دجال، عیسیٰ اور یاجوج ماجوج، یہ آپ اس کو سیکوینس کے طور پہ اس طرح یاد رکھو کہ آپ کو پتا پہلے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج، تو اس طرح سے بھی آپ کو یہ تین یاد رہیں گے انشاءاللہ. پھر دابت الارض، وہ جو ایک جانور زمین سے نکلے گا، سیون ہو گئی. پھر دخان، دخان سورہ دخان میں بھی دخان کا ذکر آتا ہے، وہ ایک دھواں ہوگا. پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا. پھر ایک اور نمبر ٹین، کہ ایک آگ جو ارض محشر کی طرف لوگوں کو ہانک کے لے کے جائے گی، یعنی شام کی طرف کہتے ہیں کہ اس طرف ہانک کے لے کے جائے گی. تو یاجوج ماجوج وہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کا نکلنے کا وقت کب ہوگا؟ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور میں پناہ لینے. تو یہ اس وقت نکلیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دیوار ہے، اس وقت تو دیوار کے پیچھے ہیں، اور ہر روز حدیث میں آتا ہے، یہ کس کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں، ہر روز دیوار کھودتے ہیں. جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، تو ان کا جو بڑا بادشاہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اب بس واپس چلو، باقی کل کھود دیں گے. تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب آتے ہیں اگلے دن، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پہ لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے، تو وہ دیوار کھود دیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں. پھر ان کا جو بڑا بادشاہ ہوگا نا، وہ کہے گا کہ اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھو دیں گے. اور جب یہ انشاءاللہ کہیں گے، تب وہ اگلے روز لوٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس پہ پچھلے دن چھوڑ کے گئے تھے. پھر کھدائی شروع کریں گے اور باہر نکل آئیں گے. اور پھر تو وہ کیا کریں گے، اتنی تباہی مچائیں گے، کیونکہ یہ کون سی قوم ہے؟ فسادی قوم، مفسدون ہے، پانی کو ختم کر ڈالیں گے. لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر اگر کوئی نہیں ہوگا تو وہ بچے گا ہی نہیں. وہ اتنا خون خرابہ کریں گے زمین میں، اتنا خون خرابہ کریں گے، اتنا فساد کریں گے زمین میں. اور پھر زمین والوں کا قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے اب ہم آسمان والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی ہاں، پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتانی بھول گئی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کوئی ایلینز نہیں ہیں، وہ انسان ہیں. کیونکہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا نا کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے 999 نہیں، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کتنے؟ تو کہا جائے گا ہر ہزار میں سے 999. اللہ اکبر، ہر 1000 میں سے 999. تو صحابہ سن کے اتنا گھبرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ پریشان ہو، یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. اس کا مطلب وہ اولاد آدم میں سے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج آپ کو ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی. تو اس وقت بات چیت میں یہ قیامت کی بات ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا تو نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں اتارے گا اور میں دجال کو قتل کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، پھر میں اپنے پیروکاروں کو لے کر پہاڑوں میں پناہ لے لوں گا. یہ جو میں یہاں پہ آپ کا بھی بتا رہی تھی نا، تو پہاڑوں میں یہ چلے جائیں گے اور وہ آ کے جو تباہی کریں گے، اتنی تباہی کریں گے. اب دیکھیں جو بھی ہوگا نا باہر، اب یہ تو پہاڑوں میں چلے گئے، یہاں جو لوگ قلعوں کے اندر چھپ گئے یا یہ ایمان والوں نے، بس وہ بچیں گے. باقی پہاڑوں میں جب وہ مسلمان ہوں گے تو ان کو اتنی چیخوں پکار کی آواز آئے گی، کیونکہ یہ بروٹلی لوگوں کو قتل کریں گے، بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے. اور وہاں یہ ظاہر ہے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں मैंने आपको जैसे बताया 10 गुना ज्यादा है इन बाकी इंसानों से, और इनकी कहा जाता है कि 4 लाख तो इनकी सब ट्राइब्स हैं, याजूज और माजूज के अंदर इनकी सब ट्राइब 4 लाख है, और ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि एक से हजार हजार पैदा होते हैं। और ये नहीं कि मरते नहीं होंगे, जाहिर है मर भी रहे होंगे, मगर जाहिर है इंसान है तो मरेंगे भी, लेकिन इतने ज्यादा है ये कि अब उनका मुकाबला नहीं कोई कर सकता। अब इससे अंदाजा लगाएं कि ईसा अलैहि सलाम इससे दज्जाल से लड़ेंगे, उसको कत्ल करेंगे, मुसलमान भी लड़ेंगे, मलहमतुल कुबरा भी होगी, बड़ी बहुत बड़ी जंग हो रही है, मुसलमान मुकाबले कर रहे हैं, लेकिन इनका नहीं मुकाबला कर रहे। और ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह तआला ने ये नहीं फरमाया आप उनका मुकाबला करें, फरमाया कि आप चले जाए मेरे बंदों को लेके तूर में पनाह ले। तो फिर अल्लाह ताला जो इन लोगों को अल्लाह ही खत्म करेगा, ये फिर बस हर तरफ से आ रहे होंगे। अब प्लीज कोई ये ना कहे कि भाई ये वो है, चाइनीज है, ये फलां है, ये सारी बेकार बातें। जब उन्होंने आना है ना, तो उनका फसाद रुकना नहीं है, उनका फसाद इतना ज्यादा होगा कि वो जमीन पे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक को कत्ल कर देंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि ईसा अलैहि सलाम उस वक्त मौजूद होंगे जिस वक्त ये आएंगे, और फिर वो जब लेके छुपे होंगे, लोगों की चीखों की आवाज आ रही होगी, इतना तूफान होगा बाहर, और ये छुपे में है यहाँ पे। अब क्या होगा कि वो रिवर जो बहीरा तबरिया, उसका पानी सारा पी जाएंगे, वो इतने ज्यादा होंगे कि ये भी आता है हदीस में कि यानी उनका जो पहला होगा वो वहां से गुजरेगा तो वहां पे पानी ही होगा, जो उनका लास्ट गुजरेगा ना, इतने ज्यादा है कि जो लास्ट गुजरेगा कहेगा कभी यहाँ पे पानी हुआ करता था, कभी इसमें पानी था इस रिवर में। और फिर जब सारों को कत्ल कर देंगे, और फिर देखें ये भी आता है, अल्लाह हु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह, हम कहते हैं ये वक्त बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल, अल्लाह वो वक्त कितना मुश्किल होगा कि मस्जिद नबी में, हदीस में आता है मस्जिद नबी वीरान हो जाएगी, वहां पे भेड़िए और वहशी जानवर और ये आएंगे, वहां पे पेशाब करेंगे, लेकिन कोई उनके पेशाब भी साफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सब लोग भाग गए हैं, इनके या तो कत्ल हो गए कोई लोग, या जो मोमिन है वो तो भाग गए पहाड़ों के अंदर, वो फिर वहां पे उनके पास खाना भी खत्म हो जाएगा। जाहिर है कितना खाना लेकर जाएंगे, पहाड़ों में जाके छुपे में जो जो भी लेकर गए वो तो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उनका खाना क्या होगा, तीसरा कलमा, बस तीसरा कलमा ही पढ़ेंगे, उसी से पेट भरेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे बस, अल्लाह रहम फरमा दे, कितने मुश्किल हालात है। और बाहर उनको पता चल रहा है कि लोग गारत हो रहा है, शोर शराबा हंगामा ये सब हो रहा है, ईसा अलैहि सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, वो कहेंगे वो तो इतने बुरे लोग होंगे याजूज माजूज के, वो जमीन वालों को जब सारों को कत्ल कर देंगे, कहेंगे अब हमने आसमान वालों को भी नहीं छोड़ना, तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वो तीर अल्लाह ताला की तरफ से, वो खून आलूद होकर नीचे आएंगे, कहेंगे देखा हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह हु अकबर। तो हदीस में आता है, ये मुस्लिम की हदीस है, कि इस दौरान ईसा अलैहि सलाम और मुसलमान जो कोहे तूर पर महसूर होंगे, उनका जो सामान खत्म हो जाएगा खाने पीने का, हत्ता कि एक बैल का सर 100 दीनार से भी बेहतर होगा, यानी कोई कुछ खाने को मिल जाए 100 दीनार से भी बेहतर, जो चंद दीनार में आ जाए, चंद दीनार भी क्या, दीनार तो सोने का सिक्का होता है, एक बैल का सिर्फ सर 100 दीनार से बेहतर होगा कि कुछ तो खाने को मिले। फिर उसके बाद वो तीसरे कलमे से ही अपना पेट भरेंगे, फिर ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह तू हमें इस मुसीबत से निजात दे, तब ये हाल होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब आएगा, और उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा अल्लाह ताला फरमा देगा, जिससे वो सारे के सारे एकदम ही मर जाएंगे, जिस तरह एक आदमी मरता है ना, उस तरह सारे के सारे मर जाएंगे। अच्छा अब क्या होगा वहां पे, जो ईसा अलैहि सलाम और जो मुसलमान मोमिन है, तो वो कहेंगे कि बाहर से शोर शराबे हंगामे की आवाजें खत्म हो गई, तो पता नहीं क्या हुआ बाहर, तो ईसा अलैहि सलाम उनसे कहेंगे कि ये कौन है तुम में से जो जाके देखे तो सही, कोई भी नहीं उठेगा, कोई भी नहीं जाएगा, जाने का मतलब क्या है, मौत है, और वो भी कोई आराम से तो नहीं, वो तो पता नहीं किस तरह बेदर्दी से लोगों को कत्ल करेंगे। तो कोई भी नहीं जाने को तैयार होगा, एक नौजवान खड़ा होगा। इससे पता चलता है जो जवान लोग हैं ना, उनके जब वो दीन की तरफ आते हैं तो जो उनकी खिदमात होती है वो बड़े एल्डरली नहीं कर सकते उस तरह। तो वो खड़ा होगा, वो कहेगा मैं जाता हूं। अब उसका जाना मतलब है खत्म हो जाएगा ये। अब वो जाएगा, वो नीचे उतरेगा तो देखेगा हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, कोई इतनी सी जगह भी नहीं है जहां पे कोई लाश ना, इतनी लाशें। जाहिर है वो इतने ज्यादा है, एक बालिश्त भर जगह भी नहीं हदीस में आती कि जो खाली हो इनकी लाशों से। तो वो जाके ऊपर बताएगा कि भाई ऐसे है, तो फिर वो सारे के सारे उतर आएंगे पहाड़ों से। लेकिन जमीन का तो वो हाल होगा कि बदबू इतनी इतनी सड़ांद होगी उनकी। एक तो वैसे ही इतने गंदे लोग, फसादी लोग, ऊपर से जब मर जाएंगे तो उनकी बदबू, अब उनको कौन दफनाए और कौन करे। तो ईसा अलैहि सलाम और फिर उनके साथी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह अब इससे भी नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े बड़े ऊंटों के बराबर होंगी। वो परिंदे फिर इनकी लाशों को उठा के लेके जाएंगे और जहां कहीं अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहां ले जाकर फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएगा जो पूरी जमीन पे होगी, हर घर हर खेमे तक पहुंचेगी और जमीन को धो डालेगी, यहां तक कि वो ऐसी पाक साफ चमकदार हो जाएगी जैसे कोई बाग होता है, इस तरह की होगी। तो यानी इससे पता चलता है कि जो कभी जमीन ऐसी नहीं हुई, उस तरह से जमीन हो जाएगी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा जमीन पे, फिर जमीन पे सिर्फ ईमान वाले होंगे उस वक्त, कोई और नहीं होगा। शिर्क बिल्कुल कोई मुशरिक होगा ही नहीं जमीन के ऊपर, सब ईमान वाले होंगे। इतनी बरकतें होंगी कि एक अनार पूरे पूरे कबीला खाएगा, एक गाय का दूध कई 100 आदमी पी लेंगे। उसी के बारे में आता है कि भेड़िया और बकरी खेलेंगे और एक बच्चा बड़े सांप के साथ खेलेगा। मतलब इतना अमनो अमान होगा, कोई किसी को जरर नहीं पहुंचाएगा। 7 ईयर्स ऐसे गुजरेंगे, 7 साल। इतनी खुशहाली होगी, इतनी खुशी होगी, इतनी बरकतें होंगी जमीन के ऊपर। और 7 साल के बाद फिर ईसा, अच्छा इसमें इस दौरान में भी फिर ईसा अलैहि सलाम हज भी करेंगे और वे मदीना में उनकी वफात होगी, फिर वहीं पे वो दफनाए जाएंगे। आपको पता है वो एक जगह ईसा अलैहि सलाम के लिए वहां पे नबी अलैहि सलातो वसलाम के पहलू के अंदर वहां पे एक जगह है, आज भी मौजूद है। जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो वो यहाँ पे फिर फौत होंगे और दफन होंगे। तो जो लोग कहते हैं कि जी हम नहीं हदीस मानते और ईसा अलैहि सलाम का नजूल कोई नहीं होना, और ऐसे कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चीज को मानते ही नहीं है कि ईसा अलैहि सलाम ने वापस आना है, तो सारी इन हदीसों का इनकार कर दिया फिर उन्होंने। तो खैर वहां पे वो दफन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये 7 साल के बाद फिर वो वक्त आएगा, शैतान ने कोई चैन से तो बैठना नहीं है ना, फिर वो दोबारा लोगों में शिर्क और ये चीजें शुरू करा देगा, फिर लोग शिर्क की तरफ चले जाएंगे, फिर उसके बाद तो फिर कयामत ही है। लेकिन ये जो निशानियां ना, जो जो 10 बड़ी निशानियां मैंने आपको बताई हैं, आप सरम ने फरमाया कि जब ये निशानियां पूरी होने लगेंगी तो ऐसे होगा जैसे हार टूटता है ना। आपने कभी, चलो हार ना सही, तस्बीह देखी होगी कभी, मैंने इसमें धागे इतने वो नाजुक से डाले होते हैं, कभी टूट जाती है तो कैसे उसके सारे दाने एक के बाद एक गिरता है, आप पकड़ते ही रह जाते हैं, वो गिरते ही चले जाते हैं। इस तरह से ये निशानियां पूरी होंगी, आगे पीछे इतनी तेजी से होंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तो फिर लोग शिर्क करेंगे और फिर कयामत आ जाएगी। और ये बात समझ लें कि ये जो दीवार है ना, इसके अंदर थोड़ा सा सुराख हो चुका है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सो रहे थे तो आप एकदम उठे हैं, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाकत है अरबों के लिए एक ऐसे फितने की वजह से जो करीब आ गया। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया, आप सरसर ने ये जो शहादत की उंगली और अंगूठा है ना, इनको मिलाएं, इतना सुराख हो गया, आपने दिखाया ऐसे। तो हजरत जैनब अर्ज करती हैं कि हमने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या नेक लोगों की मौजूदगी में हम हलाक हो जाएंगे? आपने फरमाया जब बुराई आम हो जाएगी, तो इसका मतलब नेक बहुत ही कम ही रह जाएंगे फिर। और ये याजूज माजूज ऐसे फितना परदाज है कि निकलते ही कत्ल वगारत शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं कि आराम से बैठेंगे पहले। वो अपने अलावा किसी को जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं, नहीं सिवाय इसके कि जो वो बच जाएंगे, जो छुपे होंगे, उनके अलावा इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। और एक और हदीस में आता है, तबरानी की है, आप सरसरम ने फरमाया, याजूज माजूज औलादे आदम में से हैं, अगर वो आबादियों में भेज दिए जाएं तो लोगों के असबाबे जिंदगी बर्बाद कर देते, यानी लोगों की सारी मईशत खत्म कर देते। और ये भी कहा जाता है कि ये दो भाई हैं, याजूज और माजूज, जिनकी नस्ल से फिर ये कौम है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो कौमें हैं, तो ये उनके जो बड़े हैं ना, वो दो ये भाई थे, एक का नाम याजूज था, एक का माजूज था, तो उनसे ये आगे कौमें बनी है। तो ये इनकी बात है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। और ये दुआ है कि या अल्लाह हमें तो इनमें से कोई भी फितना ना दिखाना या रब्बुल आलमीन, ना दज्जाल का और ना ये याजूज माजूज का, हम तो किसी काबिल ही नहीं है, ना हमारे ईमान इस तरह के हैं कि हम तो ठहर सके। या अल्लाह हमें ये ऐसा वक्त ना दिखाना और ना हमारी औलादों को। तो वो उस दिन इस तरह से आएंगे, वनुफिका फिस्सूरी फजमअनाहुम जमा, और हम फूंक देंगे, फूंक दिया जाएगा सूर में, फिर हम जमा कर देंगे इनको। जमा करना यानी उसके बाद फिर बस यही होगा कि मैंने जैसे आपको बताया, फिर तेजी से ये सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी और सूर फूंक दिया जाएगा और हम इनको जमा कर देंगे। जमा करना, या अल्लाह, अल्लाह हमें माफ कर दे, ये वक्त हम सब के ऊपर आना है, हम कितना भी जी लेंगे इसमें एक दिन वापसी है, लेकिन बात तो ये है कि हमारी तैयारी क्या है, हम कितने गाफिल हैं। मतलब है, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बता दिया ना, ये तो तुम्हारे आजमाने के लिए इस सूरत के शुरू में बता दिया गया ना कि इसको जीनत दिया गया ताकि तुम्हें आजमा ले अल्लाह ताला, तो ये तुम्हारी आजमाइश के लिए, और एक दिन इसको खत्म हो जाना, एक दिन ये बिसात लपेट दी जाएगी। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम जो थोड़ी देर के लिए, जस्ट टाइनी स्पैन ऑफ टाइम के लिए हम इस दुनिया में आए, कब से दुनिया चल रही है और पता नहीं कब तक चलनी है, इतनी थोड़ी देर में हमारे से इतना नहीं हो पाता कि हम कुछ ऐसा कर जाएं अपनी आखिरत के लिए। सब भूल भाल जाते हैं, क्लास खत्म होती है, नोट बंद किए, बस सिपारा एक तरफ रखा, सारी सोचें खत्म, एहसास खत्म, वो जज्बात जो लेके बैठे हुए थे वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर उसी धुन के अंदर लग जाते हैं, फिर उसी भूल का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़े बड़े फितने आने हैं जिनका अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बता दिया, हमें दुनिया में इससे आगाह कर दिया। तो वो उस दिन आएंगे, वो उस दिन फिर सूर फूंका जाएगा तो हम जमा कर लेंगे उनको, जमा करना। तो फौरन इसके बाद सूर फूंकने की और जमा करने की बात क्यों आई, इसके बारे में उलमा ये भी लिखते हैं कि याजूज माजूज इतनी कसीर तादाद में, इतनी कसीर तादाद, इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह ताला ने उनको जब वहां इकट्ठा किया हुआ है, तो कयामत के दिन तुम्हें क्या इकट्ठा नहीं कर सकता, वो भी तो इतने ज्यादा हैं, उनको जमा किया तो तुम्हें नहीं जमा कर सकता। दूसरा यौम इज़न का मतलब क्या है, कयामत, कि जिस हम छोड़ देंगे उनमें से बाज को उस दिन निकलेंगे वो अपनी कब्रों में से और फिर जमा होंगे, तो यौम इज़न से मतलब कयामत का दिन। बाज ने ये भी लिया कि उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने फैसला करना है, उस दिन वो सारी इंसानियत को निकाल देगा और ज़मीन के ऊपर लोग इंसान ही इंसान भागे जा रहे होंगे, फिर एक और नुफ़ा फूका जाएगा, फिर सारे मर जाएंगे और फिर अल्लाह ताला उनको जमा कर लेगा हशर में। وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اب دیکھو اس سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خطبہ ہے جو دیا جا رہا ہے، اور یہ جو آخر کی آیات ہیں، ان کے پڑھنے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ جو آخر کی 10 آیتیں ہیں، یہ بھی جو پڑھے گا تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو آرادنا جہنم یوم اذن للکافرین عرضا، جس دن ہم پیش کریں گے جہنم کو کافروں کے آگے پیش کرنا، یعنی جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو پیش کیا جائے گا، شو کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ فجر میں آتا نا جی یوم اذن بھی جہنم، اس دن جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، فزیکلی لایا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کو، اور وہ کیسے لے کر آئیں گے اس کو کہ گھسیٹ رہے ہوں گے اس کو اتنی اپنی فل پاور سے، یعنی اس کو چین کیا ہوگا 70,000 چینز میں، اور ہر چین پہ 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کو میدان محشر میں لے کر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ اتنا شور مچائے گی، اتنا چیخے گی چنگھاڑے گی، تو یہ دیکھیں گے تو اس کو سبھی لوگ لترون الجحیم، البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے، ثم لترون عین الیقین، تم سب اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، سب دیکھیں گے، لیکن عرض کی بات یہاں پہ آئی، یعنی خاص طور پہ کافروں کو اس کے اوپر پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کوئی وائلڈ بیسٹ کی طرح یہ تو چنگھاڑ رہی ہوگی. استغفر اللہ ربی، اللہم اجرنا من النار. جہنم کی جتنی بھی ڈسکرپشن دے دی جائے، جتنی بھی باتیں بتا دی جائیں، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس سے کچھ کلوز بھی نہیں جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں، یا جتنا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس سے کلوز بھی نہیں ہے، اسے بہت زیادہ بڑی چیز ہے، بہت زیادہ بڑی چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کو نہ دکھانا، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی اس کے قریب نہ کرنا. الذین کانت اعینہم فی غطاء، یہ ان لوگوں کے لیے جو جن کی آنکھیں پردے میں رہی، کس سے؟ آنکھوں پہ پردہ تو بڑی چیزوں سے پڑ جاتا ہے، کسی کا کسی کو اپنے رشتے دار ہی نظر نہیں آتے ایسے آنکھوں میں پردہ پڑا ہوتا ہے، کسی کو اپنے کوئی درد میں انسانیت نہیں نظر آتی ایسے آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ جو اعینہم فی غطاء عن ذکری، میرے ذکر سے جو غافل رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت آئی تھی، لیکن غطاء میں نے بتایا اتنا موٹا پردہ پڑا ہوا ان کی آنکھوں کے اوپر، اللہ کے ذکر کوئی نہیں بس دیکھنا، باقی سب چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ان کو نظر آتا، اللہ کی نشانیاں نہیں نظر آتی، اور ذکری سے مطلب قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر ہے، از ذکر اس کا نام ہے اس قرآن کا، ذکر سے مطلب ہدایت بھی ہے، ذکر سے مطلب اللہ کی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہی ہے نا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور تھے وہ نہیں استطاعت رکھتے سننے کی، نہ دیکھنا نہ سننا، یعنی اتنا ان کو حق سے بیر تھا کہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، یہ نہیں کہ وہ بہرے تھے اور یہ نہیں کہ وہ اندھے تھے، قرآن کہتا ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، واقعی دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، ساری پڑھائیاں کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، دنیا جہان کی سیریں کر رہے ہیں، سب چیز آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے، ایک نہیں دیکھنا تو اللہ کا ذکر ہی نہیں دیکھ، اسی سے آنکھیں بند، پردے فی غطائن، آلہ نہیں ہے آلہ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ہیں، آنکھوں کے اندر ہیں پردے، اندر پردے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز اوپر ہوتی ہے نا، اوپر کور ہے تو چلو ہٹانا آسان ہے، لیکن اگر اندر ہے کور، مثلا کوئی بلیک لینز ہی لگا دے، اندر ہے آنکھوں کے لگائے ہوئے پردے، تو وہ کہاں سے ہٹیں گے بتائیں، ان کو ہٹانا کوئی آسان ہے؟ لیکن یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ظلم کیا ہے، نہیں، انہوں نے پہلے اپنی آنکھیں بند کی اللہ کے ذکر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردے ڈالے تھی، ان کی آنکھیں پردوں کے اندر، انہوں نے پردے خود ڈالے ہوئے تھے اپنی آنکھوں کے اوپر، نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یعنی ہدایت آئی، بات بتائی گئی، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، لیکن یہ دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے تھے، اتنے مست تھے، قرآن کا پیغام سن کے بھی इनके पास टाइम ही नहीं था जिंदगियां बदलने का, इनके पास टाइम ही नहीं था कि वो इसके ऊपर अमल करते, इसको समझते, इसको कुछ वैल्यू देते। आज कौन सा मुसलमान नहीं जानता कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है? सब जानते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या है, आंखों पे जैसे पर्दे पड़ गए अल्लाह के जिक्र से। इतने क्लियर क्लियर अहकामात हैं, इतनी साफ वाजे आयते हैं, पता भी है कि इनकी सजा क्या है। झूठ की सजा क्या है, गीबत की सजा क्या है, सूद की सजा क्या है, जिना की सजा क्या है, आंखों का जिना है, कानों का जिना है, कि इनका पता है कि क्या है, किसी को धोखा देने का क्या है, हराम खाने का क्या सजा है, कुरान से दूर होने की क्या सजा है, ये भी पता है, फिर भी बस नहीं। तो ये क्या है, ये अंधापन दिल का ही है ना, ये पर्दे पड़ गए ना दिल पे। ये वो लगते जिनके पास आती थी कुरान की आवाज, लेकिन बस कुरान को एक साइड पे कर देते थे। दुनिया में मसरूफ भी बहुत, मसरूफियत इतनी ज्यादा, बिजी बहुत है ना, इतने बिजी हैं कि फिर उसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि फिर पर्दे पड़ जाते हैं। देखिए याद रखें, जब भी पर्दे ऐसे ही नहीं पड़ते, एक दिन में नहीं पड़ते, जब भी इंसान के आगे अल्लाह की आयात पढ़ी जाए ना, अल्लाह के हुक्म आ जाए उसके उस पास, फिर भी वो उनसे मुंह मोड़ता ही रहे, डिनाई करता ही रहे, माने ही नहीं, माने ही नहीं, माने ही नहीं, तो फिर पर्दे पड़ जाते। हम भी खुद सोचें कितने अल्लाह ताला के अहकाम हैं जो मेरे इल्म में आ चुके हैं, मैं पढ़ भी चुकी हूं उनको, मेरे कानों से गुजर चुकी है, मैंने देखी है वो आयतें, मगर मेरे अमल में नहीं है, मैं इग्नोर कर रही हूं, मैं पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रही हूं। मेरे पास जस्टिफिकेशंस बहुत हैं उनको ना करने की। अल्लाह तू हमें माफ कर दे या रब, हमें माफ कर दे। तो उनकी आंखों पे भी पर्दे और कान भी सुनते ही नहीं, तो वो ही बात जैसे हम पहले पढ़ चुके ना, सुमन बुक मुन उमियम, सूरह बकरा से ये पढ़ रहे हैं हम, अंधे बहरे गूंगे। और फिर ये तो यहां पे अंधे नहीं नजर आते ना, कयामत के दिन लिटरली फिजिकली अंधे हो जाएंगे। फिर जब ही सूरह ताहा में है ना कि वो इंसान फिर उठ के पूछेगा, या रब तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, जबकि मैं दुनिया में तो देखता था, तो उससे कहा जाएगा तू भी दुनिया में मेरे जिक्र से अंधा बना रहा, तो आज हम तुझे अंधा ही कर देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि देखिए क्या हम तो इतने कंफ्यूज हैं, हमें तो पता ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, समझ आती है बस, लेकिन नहीं मानना, नहीं मानना। अल्लाह ताला ऐसे अंधेपन से महफूज रखना, अल्लाह ऐसे बहरेपन से महफूज रखना। तो सुनाया तो जाता है, लेकिन अगर कोई सुनना ही ना चाहे तो क्या, बिखरी पड़ी हैं अल्लाह की आयतें, अल्लाह की निशानियां, कोई देखना ही नहीं चाहे तो फिर किसका जुर्म है? इसीलिए तो वो सूरह मुल्क में हम रोज रात को पढ़ते हैं ना, जब वो जहन्नुम में जाएंगे तो फिर उनसे दारोगा जहन्नुम पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई बताने वाला नहीं आया, तो आगे से कहेंगे आया था, हमने सुना ही नहीं, हमने नहीं सुना। ना सुनना भी कितना बड़ा जुर्म है। हम गाने सुन सकते हैं, हम और अपने कॉलेज स्कूल में लेक्चर सुन सकते हैं, हम लोगों की बातें सुन सकते हैं, टीवी के प्रोग्राम सुन सकते हैं, लेकिन कुरान ही नहीं सुन सकते। सुन लिया तो समझने वाला नहीं सुनना, बस इतना ही सुनना कि एक कान से जाए तो दूसरे से निकल जाए बस। नहीं भाई, हमें घबराहट हो जाती है अगर हमने समझ लिया तो। घबराता दिल इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम कितने पानी में, घबराता दिल इसीलिए है कि हमें पता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही नहीं, इसलिए घबराहटें होती। अफहसिबल्लदीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या गुमान कर रखा है उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मुझे छोड़ के औलिया, और वो बच जाएंगे, इस तरह से उनकी बचत हो जाएगी। यानी क्या ये लोग समझते हैं, इन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयत का, ये समझते हैं कि इबादी मेरे बंदों को, इबादी जब अल्लाह ताला फरमा दे तो इसका मतलब है अल्लाह ताला के नेक बंदे, जिनको वो अपना बंदा कहता है। और वो कौन है? अंबिया हो गए, रसूल हो गए, फरिश्ते हो गए, इनको सबको अल्लाह ताला अपने बंदे कहता है, या कोई नेक अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह बंदे हो गए। तो यानी उनको अपना औलिया बनाया, क्या मतलब हुआ? असल में क्या होता है, जब इंसान बदअमली के रास्ते पे होता है ना, जब इंसान खुद सही कुछ कर नहीं रहा होता और उसने अपने आप को सही करना भी नहीं है, तो अब वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। फिर वो क्या करता है, कहता है मैं इसे खुद तो कुछ होता नहीं, मैं तो नहीं कुछ कर सकता अपनी आखरत के लिए, ऐसा करता हूँ किसी का दामन पकड़ लेता हूँ, बस किसी का सहारा पकड़ लेते, यही मुझे पार करा देंगे, उनके चढ़ावे चढ़ा दो, उनकी चादरें चढ़ा दो, उनको मान लो, उनके मज़ारों पे जाके माथे टेक लो, या अगर कोई वो काफिर हैं तो बुतों के पास चले जाओ और वो उनके आगे माथे टेको, यही हमें आगे पार कराएंगे। अब वो पता है बाज लोग समझते होंगे कि काफिर मुशरिकी ने मक्का जो थे वो पता नहीं, उनको इतनी समझ ही नहीं थी, तो वो सोचते थे कि ये जो बुत हैं यही हमें, ये हमारी सारे काम करते हैं और यही हमें फायदा पहुंचाएंगे। हालांकि उनका भी यही अकीदा था कि ये नेक लोगों के बुत हैं, तो उनका उनकी रूहों का कुछ कनेक्शन है इन बुतों के साथ, जब हम इन बुतों के आगे सर डालते हैं ना तो फिर वो उनको पता चल जाता है, तो वो फिर हमसे खुश होते हैं, तो वो हमारे आगे सिफारिश कराएंगे, क्योंकि कुरान कहता है कि वो कहते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से करीब कर देंगे। और आज का जो कब्रों पे जाके सज्दे करने वाला है, कब्रों पे मन्नतें मानने वाला है, वो भी ये थोड़ी कहते हैं कि ये कब्र वाला खुदा है, वो भी यही कहते हैं ये हमें अल्लाह के करीब कर देगा, हम अल्लाह को तो मानते हैं, हमने कब कहा ये खुदा है, यही सब कुछ कर सकता है, तो क्या फर्क है मुझे बताएं फिर उनके शिर्क में और इस शिर्क में क्या फर्क है? याद रखिए ये बिदत नहीं है, ये शिर्क है कि इनको अपना औलिया बना लेना, ये हमारे सेवियर्स हैं, ये हमें सेव करेंगे उस दिन, चाहे अब वो कोई काफिर है, चाहे वो ईसाई है, जो ईसा अलैहि सलाम को, वो भी ईसा अलैहि सलाम भी इबादी में आ गए ना, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे किसी भी बंदे को, चाहे नबी अलैहि सलातो वस्सलाम, अल्लाह को छोड़ के किसी को भी औलिया बना लिया तो वो नहीं बच सकते इससे, क्योंकि इन आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, हमने ऐसे काफरों के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा, ये नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मांग लो, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे फरियाद रस, या वो हमारी हमें छुड़ा लेंगे वहां पे, वो ही हमारे सब कुछ, हमारे सब वो ही हैं और उन्हीं को से हम मांगते हैं, या हजरत अब्दुल कादिर जीलानी है, या हजरत अली हजवेरी है, या अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है तो वहां पे हम जाएंगे वो हमें देंगे, या हजरत अली है, या हजरत इमाम हुसैन है, या इनको हम पुकारें, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, और क्या है फिर, ये क्या चीज है? क्या इन नेक लोगों का दामन नहीं पकड़ के वहां पे पार होना चाहते, होना चाहते, उन पे डिपेंडेंसी, उनको अपने औलिया बनाया हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाता है मुझे छोड़ के मेरे ही बंदों को, तुम सोचते हो कि ये मेरी मखलूक है, इसको तुम औलिया बना के और पार हो जाओगे, मेरी मखलूक को समझते हो कि ये मेरे खिलाफ खड़ी होके मुझसे छुड़ा के ले जाएगी, अल्लाह ताला उस दिन शिफात की भी जिसके लिए इजाजत देंगे वो ही शिफात कर सकता है और कोई नहीं। बाज दफा हम जुबान से नहीं कह रहे होते लेकिन हमारे वाकई ये होता है कि बस ठीक है, हम तो उम्मती हैं तो हमने तो पार हो ही जाना है, तो ये चीजें सही नहीं है। हम इंसान इसको सोचे कि अल्लाह ही है जो वली है, अल्लाह ताला के ऊपर ही भरोसा करना है, उसी की इबादत करनी है, किसी और की नहीं। और वो देखे उन्होंने, ईसाइयों ने इस तरह हजरत ईसा अलैहि सलाम को या हजरत मरियम को बनाया हुआ, कौम नूह ने भी अपने नेक लोगों को, जो सूरह नूह में आता है, वुद सवा यहूस, या वो के सारे उनके नेक लोग थे उनको बनाया था, तो इंसानों में इसी तरह रहे हैं, इसी तरह वो शिर्क करते थे, इसी के खिलाफ तो अंबिया ने तबलीग की, वही चीज आज हम करने बैठ गए। कुल कह दीजिए, हल नुनब्बिकुम बिल अखसरीना आमाला, क्या मैं तुम्हें बताऊं ना उसको जो बिगेस्ट लूजर है, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला है आमाल के एतबार से, जिसका खसारा सबसे बड़ा होगा आमाल के एतबार से, वो कौन हो सकता है जिसका, आपके जहन में क्या आता है कि वो कौन हो सकता है जिसका खसारा सबसे ही बड़ा हो, जिससे ज्यादा खसारा पाने वाला कोई नहीं है। वो है अल्लदीना दल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम यहसिनूना सुना, वो लोग जिनकी गुम हो गई सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में, और वो ये समझते रहे कि बहुत अच्छे कारनामे कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े नेक हैं, वो ये समझते रहे। ये कौन लोग हैं? देखें इसमें आपको मैं दो तीन तरह के लोगों का बताऊंगी। एक तो वो लोग, सबसे पहले तो कि जो शिर्क करें, कुफर करें, मसलन मिसाल के तौर पे हजरत उमर ने देखा था एक ईसाई राहिब को, राहिब आपको पता है ना, वो राहबानियत इख्तियार कर लेते हैं, आबादियों से दूर जाके बेचारे वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं, ना अच्छा खाते, ना पीते, ना पहनते, ना शादियां करते, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इतनी इबादत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने सारी अपनी जिंदगी यानी इबादत में वक्फ कर दी, और कोई लज्जत उनकी जिंदगी में नहीं होती, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। तो हजरत उमर ने जब उनको देखा तो रो पड़े। क्यों रो पड़े? कि इतनी मेहनत करके भी सारी मेहनत जाया, सारी मेहनत जाया, क्योंकि वो तो इबादत में ही रहते हैं, रोजे रखते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, उनका कोई और काम है ही नहीं, 24/7 उनका यही काम, और उन्होंने फिर रोते हुए यही आयत पढ़ी, कुल हल नब्बे को मिला सारी ना, कि हम बताएं ना तुमको जो सबसे ज्यादा अमाल के तबार से खसारे में रहा। देखिए इन्होंने तो ना दुनिया देखी और आखरत में भी इनका कुछ नहीं रहा, कुछ भी काम नहीं आया। क्यों? डायरेक्शन ही गलत थी। देखिए ना, आपने कहीं जाना है, आप गाड़ी तेज दौड़ा रही है, तेज दौड़ा रही है, इतनी स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही है, गाड़ी भी बड़ी अच्छी है, जबरदस्त गाड़ी है, रोड भी परफेक्ट है, कहीं गड़े नहीं, कहीं कुछ नहीं, आप स्मूथली गाड़ी भगाती चली जा रही, लेकिन आप पूरा दिन ड्राइव करती हैं, ड्राइविंग कर करके शाम तक थक जाती हैं, लेकिन एंड में जाके आपको ये पता चलता है कि ये तो रास्ता ही गलत था, ये तो मैं ऑपोजिट तरफ चल पड़ी, तो आपकी वो मेहनत कोई काम आएगी? आप कहते हैं नहीं, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है, मैं तो थक गई हूँ सारा दिन से ड्राइव करते करते, और मैंने तो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई है, और देखो मैंने कितनी मेहनत की, वो मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाएगी? नहीं, आपकी डायरेक्शन ही रॉन्ग थी, तो इनकी डायरेक्शन रॉन्ग है, ये जितनी मर्जी मेहनत कर ले। अब आप देखिए इतना दुख होता है, यही बात याद आती है हमेशा, जब इन लोगों को चर्चेज के अंदर, मंदिरों के अंदर इतना करते दिखते हैं, अपने पैसे भी लगा रहे हैं, उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, उनमें झाड़ू लगा रहे हैं, वहां पर अपने आप को वक्फ किया हुआ है, तो ये कर, भाई इनके कुछ भी नहीं मिलना इसका, इनको कुछ भी नहीं, समझ आई? तो सारे जो भी, फिर वो अपने आप को, लेकिन वो तो समझते हैं ना कि बहुत बहुत नेकी कर रहे हैं, तो सारे ही ऐसे लोग जो इनकी डायरेक्शन ही गलत है, उनके साथ यही अंजाम होना, ठीक है? और नंबर 2, वो सब लोग भी जो वो काम कर रहे हैं जिनको वो समझते हैं कि ये नेकी है, और उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इखलास नहीं है, इखलास नहीं है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही नहीं है, तो उस इतना समझते जाएंगे कि हम तो इतनी नेकी कर रहे हैं, इतनी नेकी कर रहे हैं, सब जाया। जैसे आपसे सर ने फरमाया, एक शख्स 40 साल नमाज पढ़ता है मगर उसकी नमाज नहीं कबूल होती, एक भी नमाज कबूल हुई, क्यों? इसलिए कि कभी उसका रुकू पूरा नहीं है, कभी सजदा पूरा नहीं है, सजदा पूरा होता है रुकू पूरा नहीं, रुकू पूरा होता है सजदा पूरा नहीं। यार आप तो, यानी उसके अंदर रियाकारी आ गई, या उसका काम काम ही ऐसा नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक था, बिदत का काम था। तो एक रियाकारी की वजह से भी, अब उसने तो सोचा मैं तो कितने जबरदस्त काम कर रही हूं। इससे हमें यह भी पता चलता है ना कि कभी किसी के कामों को देख के हमें ये नहीं एकदम सोच लेना चाहिए, हाँ जी बहुत ये तो बड़े कारनामे। इसलिए हमारे असलाफ कहा करते थे, जब तक किसी की मौत ना देख लो ना कि ईमान के ऊपर, उस तक उसके लिए कोई आप राय नहीं दे सकते। और फिर दूसरे ये कि क्या पता है कि हमारे अमाल का क्या हाल है इस वक्त, कौन सी वक्त में रियाकारी आ गई हो, कौन सी वक्त में कोई ऐसी चीज शामिल हो गई हो कि हमारे अपनी बड़ाई का एहसास आ गया हो। इससे तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये हमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि किस वक्त उसके अंदर ऐसा कुछ आ गया। और हमें हदीस से पता चलता है कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि मैं बाज़ औकात किसी नेक काम के लिए, इबादत के लिए खड़ा होता हूं और मेरा मेरी नीयत जो होती है ये वो होती है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, मगर इसके साथ साथ दिल में ये भी ख्वाहिश होती है कि लोग भी मेरे अमल को देखें और वो पसंद करें ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत इख्तियार किया, खामोश रहे, यहां तक कि ये आयत नाजिल हुई। सॉरी, ये आयत 110 के बारे में है, वो 110 आयत नाजिल हुई जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, और उसमें भी रियाकारी की एक बात का तरफ इशारा है। तो आपको मैं इसलिए यहां पे ये बता रही हूं कि रियाकारी से ऐसे है कि वो अमल जाया हो गया। तो अमल को, रियाकारी जो है वो नेक अमल को समझने चाट जाती है। और यहां पर हमें यह भी पता चलता है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि कयामत के दिन वो जो तीन किस्म के लोग हैं जिनके अमल इतने बड़े बड़े होंगे कि कोई एक आलिम होगा, कोई एक सखी होगा, कोई एक शहीद होगा अल्लाह के रास्ते में, लेकिन सबसे पहले उनसे जहन्नुम को भड़काया जाएगा। इसलिए क्योंकि रियाकारी आ गई अमल में। तो जब अमल इंसान करता है, वो चाहे देखने में कितना ही खूबसूरत अमल क्यों ना हो, चाहे वो देखने में कितनी ही नेकी लगती हो, वो नेकी बाकी नहीं रहती अगर नंबर 1 उसके अंदर रियाकारी आ गई, नंबर 2 उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट के कोई काम। तो अपने तौर पर इंसान दिल में चाहे समझता रहे, लोग चाहे समझते रहे ये नेकी है, लेकिन वो बर्बाद है। अल्लाह ताला रहम फरमा दे। इसीलिए तो फरमाया कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही और हर गुमराही आग में जानी है। अब आप कहते हैं नहीं, लेकिन है तो ये बड़ा अच्छा काम। अब वो फौरन जब बताते हैं कि ये बिदत है तो आगे से कहते हैं तो क्या हो गया इसमें, लेकिन हरज क्या करने में, ये बताएं हरज क्या है। हरज क्या करते करते आप सुन्नतों को छोड़ के बिदतों के अंदर पड़ जाते हैं। आप देख लेना, अब ये रबीउल अव्वल आ जाता है, उसमें शुरू हो जाते हैं ईद मिलाद उन्नबी। कौन सी ईद भाई, किसने ये ईद मनाई? आप ने तो इसको ईद कह के नहीं मनाया, मिलाद हो रहा है, मिलाद हो रहा है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। इनको किसने बता दिया? क्या ये मसनून काम है? इस तरह सहाबा ऐसे ही करते थे मिलादे, क्या ऐसे ही खड़े हो जाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए? 40वें कर रहे हैं, 7वां 10वां पता नहीं क्या क्या कुल कर रहे हैं, फिर कहते हैं क्या करें, रिश्तेदार हैं ना जाएं तो फिर ये होता है। बिद्दतों के अंदर हम भी अपना हिस्सा डालते जाएं, फिर नियाजें कर रहे हैं, फलाने के नाम की नियाज, फलां के नाम की नियाज, सारे वो इसके अंदर यानी बिदत के ऊपर किस किस के नामों की नियाजे कर रहे हैं। और हम कहते हैं हम कुरान की क्लासों में जाते हैं, उसके बाद सुन के भी, उसके बाद फिर मैं कैसे मना करूं, मैं ये तो फिर कैसे करूं, वो तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, बिदतों को फरोग देते रहते हैं। तो देखने में कहते हैं बड़ी नेकी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ही ले रहे हैं ना, अल्लाह का नाम भी उसी तरह लेना है ना जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया कि ऐसे आमाल का क्या होगा उलाइक अल्लज़ीना, और मसला प्रॉब्लम ये। अच्छा एक और बात भी बता दूं आपको, तीसरी एक बात, एक तो मैंने काफिरों की बात बता दी आपको कि काफिर या मुशरिक या ये वो बेचारे बड़े समझ रहे हैं कि हम बड़े नेक काम कर रहे हैं। दूसरी ये मैंने आपको बात बता दी कि मुसलमान होते हुए भी अगर किसी ने इखलास नहीं है उसके काम में या सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो भी इसमें आ गया। तीसरी ये भी कि जिसने अपनी जिंदगी बस दुनियादारी में ही गुजार दी और वो समझते रहते हैं हम बहुत अच्छे। आप कभी देखें ऐसे लोग जो बस दुनिया के पीछे उसके गुलाम बने हुए, और उनको कोई कह देना कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली चीज है, इसके पीछे ही अपनी सारी जिंदगी क्यों जाया कर रहे हैं, इसी के पीछे पागल क्यों हुए जा रहे हैं, कोई अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो करें। कहते हैं हम तो इतने नेक हैं, हम क्या, हम तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उनको भी पता चल जाएगा वहां जाके।